ना करें।
जी सर, मैं सवाल कर लूँ एक आपसे?
इरशाद करें, ये सवाल ही के लिए तो अर्ज किया है।
सर जो कुरान की आयत नंबर 2 है ना सर, वो मैं जब भी पढ़ती हूँ तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन होता है। तो उसमें ये है ना सर, जैसे हजरत आदम और हजरत अव्वा की तखलीक हुई और वो जन्नत में रहने लगे, फिर उन्होंने खैर शैतान के बहकावे में या जो भी किया तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि यहाँ से चले जाओ। तो सर एक ये जो आयत नंबर 38 है, सॉरी सूरा 38 है ना सर, सर इसकी अरबी है कुल्ला वितु मिन्हा जमीयन फाइम्मा यातियन्नकुम। तो सर इसका मतलब है कहा हमने उतर जाओ इससे सब के सब। अक्सर ये जो सब के सब है या कहीं पे आता है तुम सब, तो सर इसमें दो लोगों को तो सब के सब नहीं कहा जाता ना, तो ये यहाँ से क्या मुराद होती है? ये जरा सा कंफ्यूज करता है कि दो लोग नहीं थे, मोर देन टू पीपल थे, इस तरह लगता है, आप बताएंगे सर?
असल लफ्ज है जमीयन।
जी सर।
अब जमीयन का मतलब है कि जमा का सीगा है, सब जमा यानी कि सब लोग, सब यानी आदम और उसकी रूहें सारी इस प्रोसेस से गुजरती रहेंगी, नीचे उतरती रहेंगी।
ओ अच्छा।
गौर करें, मैंने अर्ज किया, मैंने सॉरी कुरान हकीम में जो हमें रुदाद मिलती है
जी सर,
वो ये बताती है कि अल्लाह रब्बे करीम ने इंसान को अपना नायब मुकरर किया, सोचा इन्नी जायलो फिल अर्द खलीफा, हाँ या नहीं?
बिल्कुल ऐसे सर।
अब उसके बाद अल्लाह रब्बे करीम ने नायब किसका बनाया? जाहिर है कारखाना है, कुदरत में इसको जनरल मैनेजर लगा दिया, यूं कहेंगे हम, कह सकते हैं?
जी जी कह सकते हैं
बिल्कुल। अब जनरल मैनेजर को सारे शोबों का पता होना चाहिए कि नहीं?
बिल्कुल।
अब कायनात के सारे 17 शोबे हैं, आपको 8 शोबों की सैर कराते हुए 9वें शोबे में लाए हैं, ठीक है? यहां सबसे ज्यादा कचरा है, ये कीचड़ है, मट्टी है, 3 है, सलसालिल कल फखार है, क्या है? ये 9वां दर्जा जो है कारखाना है कुदरत का, ये 9वां डिपार्टमेंट जो है जिसे आलम नासूत कहा गया, आपको सारे सिस्टम से गुजारा जा रहा है। अगर आप यहीं खो गए तो ऊपर तो नहीं जा सकेंगे
जी।
अगर आप देखे ना, आपको कहा कि भी आपको मैं जनरल मैनेजर लगाऊंगा, आप ये सारे 17 शोबे जो हैं इन पे कमांड हासिल करें, जाएं जाके विजिट करें और घूमें फिरें, सारा कुछ सीखें और फिर आ जाएं बैठ जाएं यहाँ।
जी सर।
आहा, कैसी मिसाल है
जी, बहुत अच्छी सर।
अब आपको इस शोबे में जिसमें इस वक्त जिसे आलम नासूत कहते हैं, इस शोबे में कहा मता निलाहीन, अगली आयत यही तो है, मुस्तकर फिलर कहा या नहीं? वह मतान इलाहीन, और ये कुछ मुद्दत की खेल है, यानी 50 साल, 80 साल या 100 साल, हाँ या नहीं?
जी बिल्कुल ऐसे ही सर।
तो 50-100 साल का क्या कंपैरेटिव है लाखों करोड़ों साल की अबदी जिंदगी से? कोई कंपैरिजन है?
नो, कोई कंपैरिजन।
क्या कहा अल्लाह ने कुरान में कि तो वो ऐसे होगा जैसे उठेंगे तो कहेंगे हम रात को सोए थे सुबह उठ गए?
जी बिल्कुल ऐसे ही, या कुछ पल के लिए थे।
नहीं नहीं, ये कौन सी सूरत का आखिरी जो आयत है, ईशान वादा क्या कि मैं हम रात को सोए और सुबह को उठ गए, उन्हें यूं लगेगा 30वें पारे में।
जी सर है तो, लेकिन एक्चुअली आयत का नहीं पता, आप सही कह रहे हैं, इतना हैं।
ये किसी सूरत, अब नाम याद नहीं आ रहा मुझे कौन सी सूरत का है, सूरह गाशिया का है कि किसका है, या शायद दुहा का है, बहरहाल वो आप देख सकते हैं। तीसवां पारा इतना लंबा चौड़ा नहीं, आखिरी सूरत, हर हर सूरह की आखिरी आयत देखते जाएंगे तो उसमें साफ लिखा है कि वो कहेंगे कि हम तो रात को सोए थे सुबह उठ गए। यानी दिस एंटायर ड्यूरेशन ऑफ 60, 70, 80 ईयर्स इज जस्ट लाइक अ नाइट। क्या मतलब हुआ
कि कुछ पल के लिए, कुछ अरसे के लिए,
यानी कि आपको इस डिपार्टमेंट ऑफ द फैक्ट्री, आप देखे ना एक फैक्ट्री में कितने शोबे होते हैं। अब पहला तो यह है कि भाई मशीनरी आएगी, मशीनरी इंस्टॉल हुई उसके लिए अलहदा इंजीनियर चाहिए, उनके साथ अलग किस्म की गुफ्तगु होगी, नक्शों पे डिस्कस होगा कि असेंबली लाइन कैसे बनेगी, चीज़ें कहाँ बनेंगी, कौन सी मशीन कहाँ फिट होगी वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। उसके बाद फिर रॉ मटेरियल आएगा, वो कैसे स्टॉक होगा, ये सारे डिपार्टमेंट हैं या नहीं, इनकमिंग का सारा रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा। क्यों जी?
जी बिल्कुल। तो सर फिर एज ए जनरल मैनेजर, जो जनरल मैनेजर अपना बेस्ट देगा तो जाहिर है उसकी तो बड़ी वाह वाह हो जाएगी कि तो बहुत अच्छा इसने काम किया, यही हो गया ना सर।
हाँ, अब जो बंदा जिसको जनरल मैनेजर लगाया जाना है वो फैक्ट्री के 8 हिस्से घूम चुका है, 9वें में आके वो फंस गया, इन्वॉल्व हो गया। क्या हो गया?
इन्वॉल्व।
अब वो भूल गया कि मैं जनरल मैनेजर हूं, वो भूल गया कि मुझे सिर्फ इसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, इससे कुछ सीखना है
जी।
तो बाकी 8 मराहिल वो कैसे तय करेगा
सर? यही है
ये जो कहा वल असरल हयात दुनिया, तुमने तो दुनिया की जिंदगी का असर ले लिया था, जहाँ 50, 60, 70, 80 साल के लिए तुम्हें भेजा तुम वहीं के होके रह गए, तुम्हें सारा निजाम ही भूल गया। इसलिए इंसान कहा कि ये असल बात भूला हुआ है। गौर करें क्या बता रहा हूँ।
जी जी बहुत समझ आ रही है सर।
अब आपको ये बात वाजे हो गई। और इस प्रोसेस से आदम नहीं, आदम की तमाम जुर्रियत गुजरेगी। सूरह एराफ की आयत नंबर 172 पढ़ें। उसमें अल्लाह रब्बे करीम ने कहा ताकि हमने तुम्हें सारा ये मुशाहिदा करा दिया कि ये सारा निजाम अल्लाह की रबूबियत के साथ कायम है, ताकि तुम कल को ये ना कह सको कि जी हमें तो पता ही नहीं था।
जी बिल्कुल ऐसे
याद आ गया।
जी जी बिल्कुल जी।
देखिए अल्लाह रब्बे करीम ने सारी बात खोल के बयान कर दी। हमारे बुकरातों और सुकरातों ने उसका ऐसा बैंड बजाया अपना चूरन बेचने के लिए कि सारों के पास मरोड़ ही उठ रहे।
सही कह रहे सर, बड़ा ही आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर। सीरियसली अब जब से हम इस तरह पढ़ने लगे हैं तो सर हमें तो बिल्कुल ऐसे लगता है जो पहले पढ़ा था वो इसमें उसमें बहुत फर्क है। ये एक्चुअल आपको सही मैसेज, आप हर चीज आपके ऊपर उतर रही होती है कि आपके लिए आपको समझाया जा रहा है, वरना उसको
अल्लाह रब्बे करीम का ये बड़ा एहसान है, इसे एहसान मान ले।
जी बेशक सर।
ये देखे ना, अल्लाह ही हदायत देता है,
बेशक
ये अल्लाह रब्बे करीम का बनाया हुआ एक निजाम है। अब ये सिलसिला अजीमिया क्या है, देखे ना, हजूर अलैहिस्सलाम ने हजूर कलंदर बाबा औलिया को हुक्म दिया कि भाई मेरी तालीमात का तो बहुत बाजा बजा दिया इन्होंने, अब मेरी तर्ज फिक्र की बात करो, शायद बात पल्ले पड़ जाए। हमें अंबिया कराम की तर्ज फिक्र अपना कर अल्लाह की बात को समझना है। मैंने ये बात कही कि शऊर में रहते हुए आपको इल्हाम समझ आ सकता है? हरगिज नहीं। आपको शऊर की सतह से ऊपर उठ के इल्हाम को समझना है ताकि आपका जहन वही को समझने के काबिल हो सके।
जी जी सर, ये अब समझ आया सर।
अल्लाह का नायब होने का मतलब क्या है कि आपको अल्लाह की बात समझ में आनी चाहिए और उस तरह समझ में आनी चाहिए जिस तरह अल्लाह चाहता है, या उस तरह समझ आनी चाहिए जिस तरह मैं चाहता हूँ, या उस तरह समझ में आनी चाहिए जिस तरह लोग चाहते हैं,
जैसे अल्लाह चाहता
है। बस इसको अगर हम टारगेट कर लें कि मुझे अल्लाह की बात समझनी है। अब ये जो आपने बात के आगाज में फरमाया कि वाहबित यानी नीचे उतरो, हबूत कहते हैं किसी की डिमोशन को। नीचे उतरो क्या मतलब हुआ? वाहबित कहते हैं, अब कहते हैं ना हबूते ढाका है, ढाका फॉल हो गया, फॉल ऑफ ढाका। अब ये क्या हुआ, वो आपसे अलग हो गया, आपको इस सिस्टम से एक जोन से निकाल दिया गया। अल्लाह को तो पता था मैंने इसको पूरे कारखाने की सैर करानी है। अब आपका यहाँ आके एक इंतजाम के तहत शऊर को महदूद किया गया ताकि आप उसे खुद खोलना सीखें, ताकि आपको पता चले जिनके शऊर बंद हैं उनको कैसे आप मदद देंगे कि वो अपने शऊर खोलें।
ब्यूटीफुल सर, क्या अच्छा बता रहे हैं।
गौर करें ना, अब अगर आप के शऊर खुले होते आपको पता ही नहीं कि शऊर बंद क्या होता है।
जी
आप अपनी ही बोलते रहते, नतीजा मंसूर अलाज की तरह ये मुआशरा आपको टांग देता।
अनल हक वाले सर
जी, अनल हक। अब उसने क्या कहा है? उसने तो ये कहा कि मैं एक हकीकत हूँ, उसने ये कहा कि मैं रब हूँ, उसने ये कहा कि मैं खालिक हूँ, नहीं उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो अपनी हकीकत समझ गया और कहा कि मैं ही तो हकीकत हूँ। हैं
जी,
मुआशरा ये काम बर्दाश्त करता है कि कोई अपनी हकीकत को समझ जाए? वो तो चाहता है कि उनके फरेब में रहे।
जी, शऊर की भी वो
जी, ये शैलो शैलो ब्रीदिंग से लेके शैलो कॉन्शियसनेस तक एक ही पंगा। वी आर द सफरर, द पेशेंट्स ऑफ दिस कैंसर। शैलो सोचते हैं, शैलो बिहेव करते हैं, शैलो समझते हैं, शैलो ब्रीद करते हैं। हमारी ब्रीथिंग से लेकर हमारी थिंकिंग तक सब शैलो है, सतही।
बहुत सतही।
जब इसमें आप एक लार्जर पिक्चर को देखेंगे तो डेप्थ खुद ब खुद आ जाएगी। जब आपके जहन में होगा कि मैं अल्लाह की मखलूक हूं, अल्लाह ने मुझे किसी पर्पस के लिए तख्लीक किया है, एंड I have to accomplish that purpose. This is what I am for. तो आप क्या attitude जिंदगी में कैसा हो जाएगा?
बहुत अच्छा सर, healthy हो जाएगा।
मतलब है आप दुनिया को involve नहीं होंगे।
जी सर।
जैसे देखे ना,
बिल्कुल सर।
अब आप कीचड़ से गुजरना तो है, आप कीचड़ में फंस के रोने शुरू कर देंगे, जी मैं फंस गया। अब तो यू आप एहतियात से उस कीचड़ से बचते हुए गुजर जाएं। अब आपको कीचड़ का मुशाहिदा तो कराना था अल्लाह ने कि द लोएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ में ये होता है। अब जब आप ये सारे तजर्बे से गुजर के जाके वापस अल्लाह मियां के साथ बैठेंगे तो आपका शऊर क्या होगा? एक बरतर शऊर होगा ना, आला एलीन वाला। इसे आला एलीन कहा है? वरना आप असफल साफिलीन है।
जी सर, आपकी बात से एक बात जहन में आई कि अगर ये सबसे मतलब दर्जे में सबसे लो है ये दुनिया, तो सर ये भी बड़ी भांति है इंसानों को, तो उस दुनिया का क्या आलम होगा? ये तो सोच के ही दिमाग रोशन हो जाता है,
खूबसूरत हो गई। हजूर मुर्शिदे करीम ने देखें ये जुमला यूं फरमाया, कहने लगे भाई ऊपर की दुनिया यानी मरने के बाद की दुनिया भाई अच्छों के लिए बहुत ही अच्छी है, भाई वो बुरों के लिए भी अच्छी है।
बुरों के लिए।
हाँ वहाँ तीन चीजें नहीं है, एक वहाँ मुआश नहीं है, हमारे 99% मसाइल तो ये मुआश की वजह से, रुपए पैसे की वजह से, क्योंकि पैसा इंसान की जात है, वो वहां है नहीं। दूसरे वहां सवारी नहीं है, आप सोचते हैं कि मैंने फलां से मिलना है, खट करके आप वहां पहुंच जाते हैं, चाहे वो किसी दूसरे सियारे पे ही रहता हो। तीसरे वहां शरीयत नहीं है, यानी वो निजाम जो शऊर के लिए यहां पे दुनिया में राइज किया गया वो वहां नहीं है। मिसाल आप ख्वाब में किसी को कत्ल कर दें तो आप पे शरीयत लागू होती
है? नहीं सर।
आप ख्वाब में चोरी करें तो क्या आपको कतई यद हद जारी होगी?
नहीं सर।
क्या मतलब हुआ? मैं ये कई बार, मतलब है कि ये बात हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ख्वाब के हवास में किए हुए आमाल और अफाल उनका रिकॉर्ड तो मुरतब होता है लेकिन उस पे हदूद जारी नहीं होती।
क्या कोई हद नहीं?
ठीक हो गया ना?
जी सर, थैंक यू, बहुत अच्छा।
अब क्लियर हो गई बात? देखे ना, मेन पिक्चर को हमने, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वी आर ऑन ए जर्नी टू पास थ्रू दिस फेज, द नाइन्थ फेज ऑफ आर लाइफ। लाइफ यहां पे एंड नहीं हो जाती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब यह है कि हम अल्लाह की तरफ से है, इन्ना लिल्ला है, हम हैं ही अल्लाह के, इन्ना लिल्ला है, हम हैं ही अल्लाह के, इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमें उसी की तरफ रजू रखना है, लौट के जाना नहीं। गौर करें अल्फाज में कितना फर्क आ जाता है, मफहूम दुरुस्त हो जाए, हम हैं ही अल्लाह के तो हमें अल्लाह ही से रुजू रखना चाहिए ना। हमने कह दिया हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ रुजू वापस पलटेंगे,
वापस लौट जाएं।
अंदाजा करें नहीं राजे उन रुजू रखने से है या के पलटने से?
रुजू होगा सर। सर बहुत अच्छा बताया आपने।
अल्लाह आपको खुश रखे जी कि आपने सराह दिया, मेरा मेरा मेरी हौसला अफजाई हो गई।
नहीं सर, मुझे बस एक छोटा सी एक बात आपको बतानी थी सर, बतानी चाहिए सर। आपके साथ जो मेरा एक सफर शुरू हुआ भी बहुत छोटी मुद्दत है सर, मेरा थॉट प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से सर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। कुरान को समझना, दुनिया को समझना, अपने हालात को, हर चीज में अल्हम्दुलिल्लाह सर।
अल्हम्दुलिल्लाह
आपके लिए बहुत दुआएं, आपके लिए बहुत दुआएं,
अल्लाह आपको खुश रखे।
थैंक, जजाकअल्लाह सर,
अल्लाह आपको खुश रखे जी।
थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर सवाल ये है कि कि हमारे रवैयों के बारे में है कि कभी ऐसा होता है कि हमसे कोई बंदा बात कर रहा है, उसने अपनी कोई परेशानी या प्रॉब्लम शेयर की, हमने फौरन बिल्कुल ही फौरी ख्याल आया, फौरी फैसला किया कि इनकी मदद करनी है और वो डन हो गया। अब हम बाद में ये सोचते हैं कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया, और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम किसी से बात कर रहे हैं या कोई बंदा बहुत गुस्से में आता है या कोई बहुत नेगेटिव एनर्जीज आ रही है तो हम फौरी तौर पर उसको इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि उसकी शक्ल देखी और खुद हमें भी गुस्सा आ गया। तो सर हम इन चीजों से इतने क्विक रिएक्शन से बच कैसे सकते हैं, इसके लिए क्या करें?
आप रिएक्ट करने से बाज आ जाएं और रिस्पॉन्ड करना सीखें। मैं आपको
सबके लिए
एक
तो
किस्सा
बिल्कुल
सुना
थोड़ा
देता
सा
हूं,
सोचने का टाइम चाहिए।
मैं
बताइए।
वही अर्ज करने लगा हूं, आपको एक किस्सा सुनाने लगा हूं, जरा इंजॉय कीजिए इस किस्से को। एक शादी थी, ठीक है, वलीमा था या जो भी बारात थी, खाना चल रहा था खवातीन के सेक्शन में। एक टिड्डा उछला, एक खातून के सर पे बैठ गया। खातून ने चीख मारी और पीछे को हिली और कुर्सी पलट गई, उनकी टांगे मेज को लगी, सारा खाना उछल गया, सब कपड़े सत्यानाश हो गए। तो दूसरी खवातीन ने उसकी हबड़ दबड़ से, घबराहट से चीखें मारना शुरू कर दी, वो टिड्डा वहां से उड़ा, दूसरी के कंधे पे जाके बैठ गया। वो दूसरी को जो ही पता चला, उसने भी छलांग लगाई, वहां पे भी गड़मस मच गया। वो तीसरी के खातून के जाके बैठा, उसने चीखें मारी, बैरे दौड़ पड़े। एक बैरा जब दौड़ा तो वो टिड्डा उछल के उसके सीने पे बैठ गया। ये ग्रास हूपर्स होते हैं ना, अब वो कैसी बेजरर सी चीज है, लेकिन उसने क्या किया, पूरे इमेजिन करें जरा, पूरे फंक्शन का सत्यानाश
बिल्कुल
कर दिया।
हम खवातीन इमेजिन कर सकेंगे,
हाँ,
हम भी यही करते हैं।
अब उस बैरे ने क्या किया, वो एकदम स्टिल हो गया और जेब में हाथ डाला, रुमाल निकाला, रुमाल हाथ पे लपेट और खप करके उस टिड्डे को पकड़ लिया और बाहर जाके उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, पैर के नीचे फेंक के कुचल दिया या उड़ा दिया, जो भी किया।
जी
फर्क समझ आया आपको, रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना क्या है? ये जो 1 सेकंड का स्टिलनेस है ना, दैट मेक्स द डिफरेंस। जो ही आपको रिएक्ट करने लगे तो जरा सा पॉज ले, 1 सेकंड का पॉज बहुत है। उस 1 सेकंड में आप कैलकुलेट करें कि मैं रिएक्ट करने लगी हूं या रिस्पॉन्ड करने लगी हूं। एंड हाउ,
बेइख्तियारी अमल ना हो, सही।
अगर गैर इख्तियारी हुआ तो आप और जानवर में क्या फर्क रह गया?
बिल्कुल सर, बिल्कुल।
यानी ये हैवानी सतह पे ऐसा होता है क्या कि हम इमीडिएट रिएक्ट करते हैं, इंसानी सतह पे
जी सर।
हम क्या करेंगे, हमारे जहन में शायद का मफहूम नहीं बैठ रहा, वह सरल हयात दुनिया। अल्लाह क्या कह रहा है कि तुमने दुनिया की जिंदगी का असर लिया, रिएक्ट किया। गौर करें, देखें, इसका अच्छा एक लफ्ज है इन्वॉल्व होना। आप इन्वॉल्व ना हो, रिस्पॉन्ड करने के लिए जरूरी है कि आप इन्वॉल्व ना हो। अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो आप रिएक्ट करेंगे।
बिल्कुल
अब जो भी
सही
बंदा
हो
आता
गया।
है, आप उसमें इन्वॉल्व हो गए तो आप रिएक्ट करेंगे। आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आप क्या कर रहे हैं, बड़े हौसले से उसकी बात सुन रहे हैं, तहमल से। वो जो भी कह रहा है, कितना बुरा भला कुछ भी बोल रहा है। मैं लगा था कहने के बक रहा है। आप उसकी इस बक बक को रिएक्ट नहीं करें, जरा जहन में तसव्वुर करें। एक बंदा आके बक बक कर रहा है, आपका कोई रिलेटिव है, वो रिएक्ट मतलब है आपको चिढ़ा रहा है ताकि आप रिएक्ट करें, और आप रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हुए, आप मामूल हो गए, अब वो आमिल हो गया। आप इन्वॉल्व नहीं हुए, आपने उसकी बात सुनी और आप अब मामूल बन सकते हैं। वो एक सेकंड का पॉज।
जी
बात वाजे हो गई?
जी सर बिल्कुल। रिएक्ट करने से पहले एक सेकंड के लिए ये सोचा जाए पॉज लेके।
हाँ,
इसके रिजल्ट क्या होंगे?
मैं अगर फर्ज करें एक बंदे ने आपको गाली दी, अब गाली का जवाब तो गाली है या चांटा है या शोर है, हाँ या नहीं, या मतलब ये सब रिएक्शंस हैं, पॉसिबल रिएक्शंस ये।
सही।
अब फर्ज करें कि उसने गाली दी और आप हंस पड़े, आपने उसे कहा इस गाली का क्या मफहूम है? क्या हुआ? आपने असर ही नहीं लिया, आप इन्वॉल्व ही नहीं हुए।
सही, क्या बात है सर।
देखे ना, आपने कहा, उसने कहा उल्लू की पट्टी। फर्ज करें
जी,
अब आप कहें कि ये पट्टी क्या होता है, शागिर्द को कहते हैं। मेरा शागिर्द, मुझे यकीन है कि वो उल्लू नहीं था। जरा गौर करें, क्या अशर होगा, क्या अशर होगा? यानी
जबरदस्त है, क्या हैंडलिंग बताई आपने।
अगर आपने असर लिया तो आप रिएक्ट करेंगे, अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो रिएक्ट करेंगे, अगर आप हैवानी सतह पे हैं तो रिएक्ट करेंगे। मैंने तीन बातें कही।
सही।
और अगर आप इंसानी सतह पे हैं तो आप पॉज लेंगे और उस सेकंड में आपने सोचना है कि हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड टू हिम। उसका अच्छा तरीका क्या है कि आप फुर्सत में अकेले बैठ के इस किस्म की सिचुएशंस को सोचें कि ऐसी सिचुएशन अगर अराइज हो जाए तो मैं इसको कैसे हैंडल करूंगी कि मुझे रिएक्ट ना करना पड़े। यानी ये जहनी मश्क हो गई। आप जहनी मश्क करेंगे एक सिचुएशन को फर्ज करें, मफरूजा, क्योंकि हम मफरूजा दुनिया में, तो फर्ज करके आप कहें अच्छा फर्ज करें ये सिचुएशन अराइज हो गई, कैसे हैंडल करूंगी मैं इसको। जब आप उसका एक हल सोचें फिर खुद ही उसको क्रिटिसाइज करें कि नहीं अगर मैंने ये किया तो वो ये करेगा, फिर ऐसा सो जवाब सोचें कि अगला जवाब ही ना बन पाए उसके पास।
ठीक हो गया सर।
जब आपके जहन में वो जवाब आ जाएगा अकेले बैठ के, ये मुराकबा ही तो हो गया ना एक तरह का, इसी को गौर व फिक्र कहते हैं। तो रिएक्शन से बचने के लिए आपको गौर व फिक्र करके पॉसिबल सिचुएशन को हैंडल करने का बात सोचना तो आना चाहिए ना। सिर्फ ये कह देने से थोड़ा ही हैंडलिंग हो जाएगी कि जी मैंने, मुझे कह दिया मकसूद साहब ने कि जी वो सिचुएशन हैंडल करना सीखो। अरे भाई, सिचुएशन को पहले आप इमेजिन करेंगे, फिर उसके एक हल, दो हल, तीन हल, मैं यूं हैंडल करूं, मैं यूं करूं, मैं यूं, अगर मैं यूं करूं तो ये होगा, ये शतरंज की खेल है, चालें सोचनी पड़ती हैं। अगर अगले ने ये कहा तो मैं ये कहूंगा, अगर अगले ने ये कहा मैं ये कहूंगा। इस तरह जहन को गौर व फिक्र करेंगे तो हल निकालेंगे ना। अब देखे ना, कहने में कितना आसान जुमला है। आपने बहुत अच्छा किया कि इसकी शरह चाह ली कि भाई रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना। अब एक जुमला है, उसके पीछे कितनी थिंकिंग है।
बिल्कुल सर।
आज आपने सवाल पूछा, मैंने अर्ज कर दिया कि भाई ये बड़े सलीके की गेम है, इसके पीछे बहुत गौर व फिक्र इन्वॉल्व है, रिस्पॉन्ड करने से पहले आपको बहुत जहनी तैयारी चाहिए, जहन साजी चाहिए।
जी सर बिल्कुल।
देखिए ना, सारा खेल है जहन साजी का, और वो राह सलूक है। क्या करना है, हमने अपने एटीट्यूड्स ठीक करने हैं। सबसे पहले जो एटीट्यूड ठीक करना है वो ये कि रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना।
सही हो गया सर।
फर्क बता दिया कि भैया रिएक्शन जो है वो हैवानी सतह है, रिस्पॉन्ड करना ज़हनी सतह है।
सही सही।
बाज रिस्पॉन्सेस बाज जगह बाज सिचुएशन में यू हैव टू हैव ए वेरी स्टर्न रिस्पॉन्स। स्टर्न किसे कहते हैं? सख्त रवैया। बाज जगह आपको सख्त रवैया गलत हो जाता है, बाज जगह जरूरी होता है। देखे ना बजुर्ग मुर्शिद करीम ने मुझे कहा गुस्सा नहीं करना, मकसूद साहब लगे रहे अपना, पहले तो मानते ही नहीं थे कि मुझे गुस्सा आता है। कोई 20 साल लगे हजूर मुर्शिद करीम ने आखिर एक दिन कायल कर ही लिया कि जी हाँ आपको गुस्सा आता है और आप बाज आ जाए। हम बाज आने के चक्कर में दूसरी हद पे जा खड़े हुए। तो एक दिन मकसूद साहब ने अपने पीरो मुर्शिद से अर्ज की कि हजूर मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया लेकिन घर का और दफ्तर का सारा निजाम तलपट हो गया। अब्बा ने मेरी तरफ देखा, कहने लगे मैंने आपको गुस्सा करने से मना किया, डांट टपट से तो नहीं। मैं शशदर रह गया कि हैं, अब इसका फर्क तलाश करता रहा कि डांट टपट में और गुस्से में क्या फर्क है। देखें डांट टपट एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरत है क्योंकि आगे शऊर कैसे हैं, उन शऊरों को हैंडल करने के लिए कई जगह आपको डांटना पड़ता है। फिर अब्बास हुजूर ने पूरी वजाहत की कि मैं बाकायदा प्लान करता हूँ कि फलां को कैसे डांटना है, कितना डांटना है।
सही।
कैसे डांटना है, कितना डांटना है, किस टोन में डांटना है, सिर्फ एक तंजिया जुमला कह के काम चलाना है या आवाज ऊंची करके उसको स्नब करके बात करनी, ये सब कैलकुलेट करके आप करेंगे तो ये गुस्सा नहीं है, ये डांट डपट है।
सही हो गया सर, बिल्कुल
फर्क समझ आ गया। गुस्सा जो है वो इनवॉलेंट्री है, वो रिएक्शन है। ये जो गुस्सा है ये असल में क्या है, रिएक्टिव फोर्स है ना
जी।
वो एनर्जी जो आपके अंदर अल्लाह ने रखी है, अगले का जुमला सुन के आप इन्वॉल्व हुए तो एनर्जी ने बस्ट मारा, इधर से आपके मुंह से ऐसी बात निकल गई जो बाद में आप पछता रहे
जी।
और अगर आप सोच के बोल रहे हैं तो इंतहाई तैश में भी आप हैंडल कर लेंगे सिचुएशन को।
सही हो गया सर।
सर आपने ये बहुत अच्छा समझाया है, इसी से कॉन्टेस्ट में सर मेरा एक सवाल है। कुछ लोग आपके बहुत करीब रहते हैं और बहुत अच्छे हैं, मतलब ऑनेस्टली अल्लाह से मतलब बहुत हर तरह से अच्छे लोग हैं, ये सर उनको ना मतलब नेगेटिविटी बहुत है, जैसे कि मैंने काम बहुत ज्यादा किया है, मुझ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, मैं तो थक रहा हूँ या थक रही हूँ, इस तरह के जुमले कि मुस्तकिल पूरा दिन अगर तकरार हो आपको मतलब समझ नहीं आएगी मैं किस उसमें हूँ। तो सर समटाइम्स मैं बहुत परेशान सी होती हूँ कुछ ऐसे लोगों से, तो इनको कैसे हैंडल किया जाए?
मतलब लफ्ज परेशान के लफ्ज पे मतलब पे गौर कर ले।
नहीं सर मतलब मैं सोचती हूँ हैंडल कैसे करूँ।
मैं आपको तरीका बता दिया ना कि भाई आपने इमेजिन करना है कि एक सिचुएशन है, अगर वो इस सिचुएशन आपने इन्वॉल्व नहीं होना, गुर तो बता दिया है
जी सर। भाई देखे सर, ना? उनको कैसे समझाया
नहीं, अगर आप के वो डोमेन में आते हैं तो समझाएंगे ना
जी सर, अगर आते हैं तो।
तो पहली बात तो ये कि वो हमारे डोमेन में हैं भी, हमारी बात सुनने पर राजी हैं। अगर हैं तो मसलन मैंने अपने बेटों से एक फरमाइश की कि घर में किल किल नहीं करना बेटे, ये घर में रिजक सूख जाता है इससे
जी सर।
एक जुमला कहा, दूसरे दिन फिर इन्होंने शोर किया तो मैंने फिर इन्हें यही जुमला सुनाया कि बेटे आपको कल मैंने क्या कहा था। तीसरी दफा जब ये फिर हरकत हुई तो मैंने उनसे बिठा के एक सवाल पूछा, कि भाई ये बताओ कि ये हम जब बाहर लोगों से बात करते हैं तो कितने बाइखलाक हो के बात करते हैं, तो हम अपनों के साथ उतना सा इखलाक क्यों नहीं बरतते जितना बाहर लोगों के साथ बरतते हैं? आपको समझ आई मेरी क्या मैंने अर्ज की
जी,
उनसे?
बिल्कुल समझ आ गई, बिल्कुल
अब क्या हुआ कि मेरे पास दो टूल आ गए। जब ये आपस में बदतमीजी से बात करते, मैं कहता हूँ भाई गैरों से सलूक या तो ऐसा ही कर लो जैसा तुम अपनों से करते हो, या अपनों के साथ गैरों वाला सलूक कर लो, खुदा के वास्ते किलकिल बंद करो, मुझे बुरा लग रहा है। अब जरा टोन ऊंची कर दी, क्योंकि मेरी डोमेन है, जहां मेरी डोमेन है वहां मैं ये तरीका इख्तियार करता हूं। फिर भी कोई पंगा हो जाए तो मैं क्या कहता हूं कि बुला के डांटना शुरू कर देता हूं कि बेटे आपको एक दफा कहा, दो दफा कहा, तीन दफा कहा, आपकी समझ में नहीं आ रहा? नतीजा वो कहते हैं जी समझ आ गया। मैं कहता हूँ चलो हटो यहां से, समझ आ गया तो अमल करो इस पे, खुदा हाफिज। देखें हर चीज की हैंडलिंग, बीवी खामन को हैंडल ना कर सके तो घर का क्या हशर होगा? खामन बीवी को हैंडल नहीं कर पा रहा तो क्या हशर होता है? माँ बाप बच्चों को हैंडल ना कर सके तो बच्चे ब्लैकमेलर हैं, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मुझे बच्चों की ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना। इसका जुमला क्या है कि फरमाइश का हक दें, जिद मत करने। देखे ना ये बात इतनी बड़ी बात है कि हजरत अवैस करनी का जिक्र सुनते हैं तो हमारे दिलों में उनके लिए एहतराम और प्यार आ जाता है। वो ऐसे आशिक रसूल हैं जो कभी नहीं मिले उनसे, और उनका मुकाम इतना आला है कि हजूर मुर्शिदे करीम ने अपने हाथ की ये अंगुश्ते शहादत और ये दरमियान वाली जो बड़ी उंगली है इसको ऐसे जोड़ के दिखाया, कहने लगे हजूर अलैहिस्सलाम के साथ हजरत अवैस करनी यूं जुड़े हुए। गौर करें, अब वो बंदा अपने इश्क से घर छोड़ के नहीं भागा। उनकी वालदा नाबीना थी तो वो उनकी लुक आफ्टर के लिए उन्होंने शादी तक नहीं की। फराइज में इन हमाक का क्या दर्जा है? मैं सल्यूट पेश करता हूँ उसकी वालदा को, उनकी वालदा को, जिन्होंने ऐसी तरबियत की कि फराइज में इन हमाक का ये दर्जा था कि उन्हें पता था मेरा फर्ज क्या बनता है, माँ का, माँ को लुक आफ्टर करना है मैंने। लेकिन अपने इश्क में भी उन्होंने पूरा कमाल हासिल किया। और करें
जो आपने बताया था ना कि हर चीज को ऐसा मतलब हुस्न के दर्जे तक।
आहा आहा, ये है आमिलु सालेहाते, ठीक है। और अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, जो अपने आमाल की इस्लाह करते करते उसको दर्जा हुस्न पे ले जाते हैं, अल्लाह उनको प्यार करता है
जी।
ये है सिंपल सा कहानी जी।
सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।
और कोई सवाल है तो जारी रखें वरना जी।
सर मेरे ख्याल से हो गया।
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी जी इरशाद जी। जी इरशाद।
जब अल्लाह ताला जी सर जब अल्लाह ताला ने मच्छर की मिसाल दी तो काफिर हैरान हुए और कहने लगे कि खाली की कायनात के लिए ये क्यों नकर मुनासिब है कि वो एक छोटे कीड़े की मिसाल दें। यहाँ पर सर मुझे जो समझना है, मादा मच्छर के सर पर 100 आंखें होती हैं, इसके मुंह में 48 दांत है, ये अंदर की कामिल दिल है,
सही।
ये तने में छह छह छुरियां हैं और हर एक का अपना काम है, इसके अज़ा के हर सिरे पर तीन पर हैं। सर इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देंगे कि अल्लाह
उन्हें उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं किया कि अल्लाह ने मच्छर क्यों तख्लीक किया है? ये कारीगरी तो अपनी जगह देखे ना, कारीगरी अपनी जगह। आप घास की पत्ती को देखें तो उसमें वंडर्स नजर आते हैं। हमारी अकल, हमारा शऊर, अल्लाह का नायब होने के बावजूद उसकी इस कारीगरी को समझने पे राजी नहीं है। सवाल तो ये पैदा होता है कि भाई अल्लाह ने, यानी देखे ना, मुशरिकीन ने ये सवाल किया कि अल्लाह को मच्छर जैसी चीज का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? और करें, ये उनकी सतही सोच की तरफ इशारा है।
जी जी सर,
अल्लाह रब्बे करीम डांट रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तुम लोगों को बात ध्यान से देखने के बजाय आगे से तुम एतराज जड़ने के चक्कर में पड़ जाए, तो जिक्र क्यों किया? उसने ये क्यों कहा, ये क्यों नहीं कहा? तुम्हारी मर्जी से कहेगा अल्लाह। और करें, असल डांट किस बात पे पड़ी है?
जी सर।
आगे से अल्लाह मियां ने कहा अल्लाह नहीं शर्माता।
जी।
जब तख्लीक करने से अल्लाह नहीं शर्माया
जी बिल्कुल सर,
तो ये शर्म क्या हुई? इंसानी मयार हुआ ना।
जी सर।
अल्लाह तो तख्लीक करते हुए नहीं शर्माया और आपको जिक्र पे शर्म आ रही है, तो आपका क्या शऊर क्या हुआ? शऊर की महदूदियत की तरफ इशारा है इस आयत में।
जी सर, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ना सूरह मोमिनीन की आखिरी आयतों में से, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें एक आयत थी, एक लफ्ज था काफिरों के लिए कि यानी वेस्ट नहीं बनाया कुछ भी। तो उस दिन गौर कर रही थी कि ये तो दोनों तरफ है, एक तो काफिरों को ये बताया जा रहा है कि जब उनकी आंख खुलेगी उन्हें दिखे कि देखो सब कुछ वेस्ट नहीं बनाया था। अब ये जो बात मानने वालों पर आ जाती है, तब भी वो जैसे उन्हें मुशाहिदा या इदराक होता है, तो यही चीज दिख रही होती है कि या अल्लाह तेरी कारीगरी, तूने वाकई में कुछ भी
बिल्कुल बिल्कुल देखे, जब आपको अल्लाह की तख्लीक का जो पसे मंजर में हिकमत काम कर रही है, जब नजर वहां तक चली जाती है
जी सर, यही
तो अल्लाह ने क्या कहा कि वो बंदे जो उठते उठते बैठते लेटे अपने पहलुओं पे गौर करते हैं, वो क्या कहते हैं? कुल्लु मिनिंद रब्बेना। क्या कहते हैं? सब कुछ हमारे रब की जानिब से। यानी कि वो इस एंगल से सोचने की आदत में पड़ जाते हैं, अल्लाह की निशानियों पे गौर करते हुए। आखिरी जुमला क्या होता है कि तो सब मेरे रब का बनाया हुआ सिस्टम है।
सर बहुत हैरत होती है, बहुत ही।
और जहाँ हैरत होती है वहीं अल्लाह क्योंकि अल्लाह का लुगवी मतलब है मुतहय्यर कर देने वाला।
जी सर।
तो जहां आपको हैरत हो समझ जाइए कि अल्लाह रब्बे करीम आप पे शफकत फरमा रहे हैं, आपकी तवज्जो दिला रहे हैं, इसलिए उस चीज में और ज्यादा तफक्कुर करें।
यस सर,
ठीक हो गया?
यस सर।
चलें अपना ख्याल रखिए। जी
सर, एक चीज पूछ रही है, उसके मीनिंग सर पूछते हैं, ये आज की बात में एक वो है जमीन प्रिंटिंग प्रेस, तो उसमें सर अपने बहुत तफसील से सदफ के बारे में बहुत तफसीली बताया है। तो सर उसमें था कि नौ रोज के 21वें दिन नीसा का महीना, सर सही पढ़ रही हूँ? नून ये सीन एलिफ नून गुन्ना नीसा।
मैं नहीं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा, आप ये कौन से महीने का पढ़ रहे हैं?
सर ये अपने आज की बात का टॉपिक है जमीन प्रिंटिंग प्रेस।
ये कौन से महीने का, कौन से सन का?
सर कुछ नहीं, ये लिखा है मैं आपको जो बता रही हूँ बस ये लिखा है 9 रोज के 21वें दिन निशा का महीना शुरू होता है। इस महीने के बादल अबरे निशा और बारिश आबे निशा कहलाती है।
मतलब है ये नाम है, ये नाम है अबरे निशा। हाँ जी अबरे निशा यानी के ये एक मौसम है उसमें जब बारिश बरसती है तो सीपियां जो हैं वो कहते हैं समुंदर की सतह पे आ जाती हैं।
जी जी सर जी। अच्छा ये नाम है सर।
उसको अबरे निशा कहते हैं।
सही।
इस पे मैं गालिब का एक शेर याद आ गया।
जी सर इरशाद।
दाम है हर मौज में हल्काए सद काम में नहंग, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गौहर होने तक। दाम है हर मौज में, दाम कहते हैं जाल को, हमारे यहाँ दाम तो कीमत कहते हैं ना। दाम है हर मौज में यानी वो सीपियां जब ऊपर आती हैं तो अपना मुंह खोलती हैं या अपने दोनों पर ऐसे चौड़े करती हैं ताकि बारिश का अबरे निशा का एक कतरा उनके अंदर चला जाए। ये मिथ है, ये हकायत है, असल कहानी कुछ और है। लेकिन वो रिवायत ये है कि सीपियां जब सतह आप पे आती हैं तो मौजे जो हैं वो दाम यानी जाल, जैसे मछेरा जाल फेंकता है ऐसे उछाल के, तो वो सीपियों के ऊपर दाम है हर मौज में। हर मौज एक लहर जो उठती है वो एक जाल की तरह उनके ऊपर गिरती है। हल्का ए सद कामे नहंग, हल्का कहते हैं शिकंजे को जिसे शिकार पकड़ा जाता है। सद मैंने 100, काम कहते हैं जबड़े, निहंग कहते हैं घड़ियाल या मगरमच्छ या इस तरह के बड़े जानवर जिनके बड़े जबड़े हों। जरा गौर करें कि वो सीपियां खाने के लिए सारे जबड़े खोलकर आ जाते हैं। अबरे निशा से बात चली कि वो अबरे निशा यानी कि वो खालस पानी के हसूल के लिए जो भी सफर करता हुआ सतह आप पे आता है तो वो मौजें जो हैं उसमें गंदा पानी भरना चाहती हैं या घड़ियाल और मगरमच्छ और इस तरह के बड़े शार्कें और ये बड़ी मछलियां जो हैं ये उनको खाना चाहती हैं, ऊपर आ जाती हैं। देखें क्या गुजरे है कतरे पे गौहर होने तक। क्या मंजर कशी है, क्या तस्वीर पेंट की है।
माशाल्लाह सर ये तो बहुत ही आला हो गया
जी। ये जो मैंने गालिब के इस शेर में इमेजरी है, इसको इमेजरी कहते हैं।
जी सर जी।
इस इमेजरी को देखते हुए आप जरा इसको लगाएं, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गौहर होने तक। इंसान क्या है, पानी की एक बूंद,
बूंद है जी सर,
वो भी तो एक गौहर बनता है ना। तो कितने तलातम कितने खतरात से बच के वो गौहर बनता है।
जी सर जी।
तो ये बात वाजे हो गई। अबरे निशा जो है
जी सर
ये असल में अप्रैल मई में बारिश जो होती है उसके लिए उन बादलों के लिए नाम रखा गया।
सही है।
और जहां तक मेरा ख्याल है ये फारसी का लफ्ज है।
अच्छा सर सही ठीक ठीक
जी। अरबी में इसका तज़किरा नहीं है।
जी सर ये मैं इसके आम नहीं रहे को समझ में मैंने कही लेकिन बहुत माशाल्लाह तस्वीरी समझ में आई माशाल्लाह। थैंक यू।
वेला बंदा यही करता रहता है, वो हर बात पे सोचता ही रहता है।
जी सर जी।
चलो ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़।